मेरा नाम दिव्या नागपाल है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो साधकों के अनुभव में। इस शो के माध्यम से हम साधकों के लिए अलग अलग अनुभव लेकर आते हैं। अलग अलग जो साधक हैं उनके दिव्य अनुभव रहे हैं पूज्य गुरुदेव के साथ, उन अनुभवों को हम सब दर्शकों के सामने लेकर आते हैं। पिछले हफ्ते हमने मिश्री दीदी से बात की थी जो बापूजी से काफी समय से जुड़े हुए हैं। बापूजी की साधना काल, जो बापूजी ने समय डीसा में बिताया है उस समय से वे बापूजी से जुड़े हुए हैं। हमने मिश्री दीदी से काफी सारे प्रश्न किए और उन्होंने अपने अनुभव हम सभी दर्शकों के साथ साझा किए। उन्होंने बताया कि किस तरह वे बापूजी से पहली बार मिली जब बापूजी उनके घर में भिक्षा लेने आए थे। किस तरह उन्होंने बताया बापूजी सत्संग करते थे, साधकों को ध्यान, गहरे ध्यान का आस्वाद करवाते थे, नर्मदा पर घूमने जाते थे। ऋषि दीदी ने अपने आध्यात्मिक अनुभव भी हम सभी को बताए। उन्होंने बताया किस तरह से एक बार वे ध्यान में बैठी थी तो इंद्र देवता आए और उन्हें स्वर्ग ले जाने की बात कही और मिष्टी दीदी ने इंद्र देवता को जवाब में कहा कि बापूजी ही उनका स्वर्ग है, बापूजी उनका सर्वस्व है, उन्होंने स्वर्ग में जाने से मना कर दिया। एक सुंदर अनुभव उन्होंने हमें बताया कि किस तरह एक बार वे ध्यान में बैठी थी और 33 करोड़ देवता आए थे उनके ध्यान में और उन्होंने कहा कि उनका पुण्य इतना बढ़ गया है कि वे 33 करोड़ देवता मिश्री दीदी के दर्शन करने आए हैं। एक बार उनको ऐसा अनुभव हुआ उनके अनुष्ठान की पूर्णाहुति से पहले कि उन्हें हर जगह भगवान कृष्ण के दर्शन हो रहे थे। तो ऐसे अनेक अनुभव, सुंदर अनुभव, दिव्य अनुभव, अद्भुत अनुभव मिश्री दीदी ने हम सभी के साथ साझा किए। आज भी हम अपनी चर्चा मिश्री दीदी के साथ जारी रखने वाले हैं, उनसे और नए प्रश्न पूछने वाले हैं। इससे पहले आज की हम चर्चा शुरू करें, एक अपना निजी अनुभव मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगी, साझा करना चाहूंगी कि किस तरह मुझे ये एहसास हुआ कि बापूजी हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। हमें याद है वो समय जब बापूजी का स्वास्थ्य पीछे बहुत ज्यादा खराब हो गया था। सभी शिष्य बापूजी के स्वास्थ्य के लिए जप कर रहे थे, तप कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, संकल्प कर रहे थे कि बापूजी शीघ्र शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। इसी बीच सभी साधकों की तरह मैं भी बापूजी को स्वास्थ्य को लेके थोड़ी चिंतित थी। एक दिन मैं इसी विषय में विचार कर रही थी पूरे दिन कि बापूजी का स्वास्थ्य आज कैसा होगा, बापूजी का स्वास्थ्य अब कैसा होगा, इस तरह मैं किससे पूछूं कि बापूजी का स्वास्थ्य कैसा है। तो इस तरह के प्रश्न मेरे मन में आ रहे थे। पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा तो देखिए कि उसी दिन उसी रात जब मैं सोई तो स्वप्न में मुझे पूज्य गुरुदेव ने दर्शन दिए और यही प्रश्न मैंने बापूजी से पूछा कि बापूजी आप स्वस्थ तो है ना। तो बापूजी ने मुझे इशारा करते हुए, इस तरह से हाथ दिखाते हुए, सांत्वना एक तरह से वो दे रहे थे, मुझे ऐसा अनुभव हुआ और उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने इस तरह से इशारा किया और मुझे सांत्वना दी कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है। तो ये अनुभव ये एहसास दिलाता है कि बापूजी क्षण क्षण हमारे साथ है। बापूजी अगर प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ नहीं है, वो अंतर्यामी रूप से हम सभी के मन में बसे हुए हैं और साधकों के, अपने शिष्यों की मन की बातों को भी वे भांप लेते हैं। तो चलिए मिश्री दीदी से भी पूछते हैं कि क्या उनको कभी ऐसा अनुभव हुआ है, ऐसा चमत्कार या ऐसा एहसास हुआ है कि बापूजी उनके साथ।
उस दिन अकेली मैं गई थी घूमने के लिए नदी पे, तो मेरे को शमशान बीच में आया ना, तो डर लगा, डर लगा, तो पीछे आवाज आई, ऐसे पीछे देखा तो बापू मेरे पीछे आ रहे। बापू तो करमंडल लेकर चले गए आगे आगे और मैं पीछे पीछे गई। तो रास्ते में एक मर्दा पड़ा था, लाल कपड़ा ओढ़ कर सोया पड़ा था रास्ते में, तो मैं ऐसे बाजू में होकर चली गई। वहाँ जाकर जान में बैठी, नदी पे जान में बैठी। बाद में वापस इधर आए आश्रम में, तो यहाँ सत्संग पूरा हो गया, लोग सत्संग करके उठ गए, बापू भी उठ गए। उसके बाद बापू ने मेरे को देखी इस दरवाजे से आते, पहले ये दरवाजा था, यहाँ से आई मैं अंदर और ए बैठो 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 बैठो, एक आदमी घूमने गया था वो अभी आया है, थोड़ा सत्संग और करे। तो फिर एक घंटों सत्संग बापू ने किया। बापू ऐसे देखो सामने देखते ना, तो जैसे सूर्य उगता है ना, तो उनकी किरणें कैसी होती, ऐसे बापू की आंखों में से किरणें निकलती, वो हमारे ऊपर पड़ती, तो उतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद के बस वर्णन नहीं कर सकते, इतना आनंद होता था।
उस समय जब दीसा में सत्संग हुआ करता था मिश्री दीदी, तो सत्संग में कितने लोग आते थे?
शुरू शुरू में तो थोड़े ही लोग आते थे, फिर अंदर बापू रूम में सत्संग करते थे, उसके बाद फिर इधर सत्संग करने लगे, ज़्यादा लोग आने लगे। लोग हम आते थे ना तो रास्ते में मैं मेरी माँ आती थी, लोग पूछते थे कि तुम सुबह सुबह रोज कहाँ जाते हो, मैं कहो लीलासा के आसन में सत्संग होता है, वहाँ जाते सत्संग सुनने के लिए, लोगों को कहते थे, फिर लोग ज़्यादा आने लगे, ऐसे ज़्यादा लोग आते थे।
मुझे गुरुदेव ने अपने सत्संग में शिवलाल काका का कई बार जिक्र किया है, तो मिश्री दीदी क्या आप हमें बता सकती हैं कि शिवलाल काका की पूज्य गुरुदेव से पहली मुलाकात कैसी रही होगी? आप विस्तार से हमें बताइए इस मुलाकात के बारे में।
शिवलाल बापू रात को सत्संग में आए थे, रात को रविवार को सत्संग होता, पहली पहली बार काली टोपी पहरी हुई थी, धोती पहरी हुई इधर आए, इसके मन में हुआ कि बापू क्या खाते होंगे, अकेले रहते क्या खाते होंगे, तो बापू ने डब्बा दिखाया, देख ये आटा पड़ा है, हम रोज रोटी बना के खाता हूँ अपने हाथ से। तुम कहता है कि बापू क्या खाता होगा, और सुबह नाश्ता करता हूँ, थोड़ा चना थोड़ी मूंगफली और भिगो के रख देता हूँ, फिर सुबह उसका नाश्ता कर लेता हूँ और बाद में 12 बजे रोटी बना कर खा लेता हूँ। पहली बार आया तब बापू ऐसे कहा शिवलाल को, बाद में शिवलाल को भी आनंद आने लगा, फिर शंकर भाई आने लगा, फिर उसका मामा आने लगा, फिर उसकी माँ आने लगी, सब उसकी घर वाले आने लगे, फिर तो लोग ज़्यादा आने लगे, बहुत आते थे।
मुझे गुरुदेव ने अपने सत्संग में कई बार एक मुस्लिम महिला का जिक्र किया है, मुझे गुरुदेव ने बताया कि उस मुस्लिम महिला ने कैसे भाप लिया था, जब एक साधक बापू जी का सत्संग सुन के घर जा रहा था, तो उस मुस्लिम महिला ने उस साधक को रोक के कहा कि बहुत सारा माल बटोर के, ज्ञान बटोर के वो आ रहा है, तो क्या आप उस प्रसंग के बारे में जानती हैं, और अगर आप जानती हैं तो क्या आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएंगी उस मुस्लिम महिला के बारे में?
इधर रास्ते में अपना ये चार रास्ता है ना, वो होटल रहती है शिवलाल काका होटल, वहाँ वो माई ऐसे पड़ी थी, तो यहाँ से एक भाई टेकू भाई नाम था उनका, वो सत्संग सुन के जा रहा था, तो उसने उसने बोला माई ने, ओहो आज तो बहुत मान माल मान के आया है, के माल मान के आया है तू, आज तो बहुत आनंद में है, सत्संग सुन के आया है। हाँ के सत्संग सुन के आया हूँ, तुम्हारे को कैसे पता? मेरे को सब पता चलता है, कि मुसलमानी बोली। फिर वो सुबह आया सत्संग में टेगू भाई, तो बापू उसको बात की कि एक माई है, वो ऐसे बोला उसने मेरे को माल मान के आया है। कि दूसरे दिन फिर इधर अभी आई थी, यहाँ आश्रम में सत्संग चालू था, तो सत्संग पूरा हुआ ना, तो बापू और दो चार जने दूसरा जो सत्संगी आते थे वो साथ में उस माई के पास गए, तो मैंने कहा बापू मैं आऊँ, बोले नहीं मैया माइयों को काम नहीं है वहाँ, माइयों को नहीं आना। फिर बापू अकेले चार तीन चार भाई साथ में लेकर गए, दर्शन किया उसका, मैंने दर्शन नहीं किया मुसलमान का।
तो मिश्री दीदी आप हमें बताएं, हम दर्शक जानने के लिए उत्सुक हैं कि बापू जी की उस समय दिनचर्या कैसी रहा करती?
बस बापू का तो ध्यान भजन ही होता था, और हम तो सत्संग करके चले जाते थे सुबह और शाम दोनों टाइम, उसके बाद बापू ध्यान भजन में मस्त रहते थे, नदी पे घूमने जाते थे, दिन को भी अपना ध्यान भजन में स्वामी जी मस्त रहते थे, ऐसे किसी को आने नहीं देते थे, बस टाइम सर सत्संग भजन सत्संग होता उस समय आते थे सब भाई लोग बहने सब। शुरू शुरू में क्या हुआ, बापू सत्संग करने लगे तो मेरा मन भगवान में भजन में लगने लगा, तो मेरे को दूसरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, किसी को बोलना करना कोई मुझे अच्छा ही नहीं लगे बिल्कुल। तो मेरा गांव में ही सासरा था, वहाँ मैं कोई काम था तो वहाँ गई, 8-10 दिन 15 दिन रही उधर, रही ना, तो मेरे को तो बस अंदर धार आंसू आँखों में हुआ जाए, मेरे तो भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, रोटी भी मुरे मुझे नहीं चाहिए, रोटी न मिले तो कोई बात नहीं, मेरे को भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी और अंदर धार आंसू आँखों में हुआ जाए। ऐसे करते करते एक दिन रात को सो गई रोती रोती सो गई, तो सुबह आवाज़ आई 4 बजे, यहाँ से चली जा। भाई कौन मने आवाज़ करे कि यहाँ से चली जा, देखो उठी जो है तो कोई देखी जे नहीं, फिर सो गई, छो फिर आवाज़ आया यहाँ से चली जा। भाई कौन कहना ऐसे ऐसे करके सुबह हुआ, उठी नहाया धोया अपना ध्यान भजन करके, फिर मैं चाह तो बापू का दर्शन किया और छूट गई, पीती थी फिर आप चाह बीजी पीती नहीं थी, कटोरी में दूध लिया, दूध पीने के लिए ऐसे कटोरी रखी दूध लेकर, और मेरी जो देरानी थी ना वो बोल बोल करने लगी और बर्तन पछाड़ने लगी, तो मेरे को आ गई रीस, मेरे को रीस आई तो मत को ए पड़ो तारो दूध मारे नहीं पीनो, मुँह तो ए हाली यूँ करी ना, मुँह तो उठी ना आई रही, एक जोड़ी कपड़ा में पहरी उड़ा था मारे, ए मारे साथ आया, आए घरे आई मार भाई ने घरे आए, 4-5 पेड़ा लेपरा पड़ी को बांधे नील आई आई, तो बापू यहाँ दरवाजे पे खड़े थे, मेरे हाथ में पड़ी का देखा कि मिश्री क्या लाई है, मैं को बापू प्रसाद, बोले क्या है पेड़ा, वो बोले कहाँ से लाई, सासरे वालों के घर से लाई कि पियर वालों से घर के लाई, मैं को बापू पियर वालों से घर से लाई, सासरे वालों के घर से नहीं लाई, तो अब सासरा वालों के घर नहीं जाने का तुम्हारे को, अब पियर में तुम भाई के साथ रहो, सगन भाई के साथ रहो, अब उधर नहीं जाने का तुम्हारे को, वो दिन आज की घड़ी कभी उनके घर गई नहीं मैं वापस। एक जोड़ी कपड़े में आई वो आई बस।
कोई ऐसा प्रसंग आप हमारे साथ साझा करना चाहती हैं जिसमें लीला शाह बापू जी ने मुझे गुरुदेव की कभी प्रशंसा की हो, ऐसा कोई प्रसंग आपको याद आता है तो प्लीज हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए।
गुलबाणी डॉक्टर से एक बार हुआ था थोड़ा, क्यों बापू नदी घूमने जाते थे तो कभी कभी ध्यान में मस्त हो जाते थे, देर भी हो जाती थी, तो उनको दवा खाना था, दवा खाना खोलने का होता था, तो कभी देर हो जाती नहीं तो बापू को थोड़ा टोकता हो कि हमें हमारे दवा खाना में देर हो जाती है, आप बापू मोड़े मोड़े आते हो नदी पे नदी से, तो बापू उनका मैं तेरा नौकर थोड़ा ही हूँ, जो तुम जैसे कहे वैसे करूँ ऐसे। फिर लीला से बापू को उन्होंने कागज़ लिखा, चिट्ठी लिखी, तो लीला से बापू ने वापस चिट्ठी भेजी कि मैंने तुमको हीरा दिया है संभालना, नहीं तो तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा, तो निकल गया ना। सत्संग सुनने लोग आते थे लेकिन उसका मनन नहीं करते थे, ऐसे ही इस कान सुने इस कान से ऐसे सब।
आपको लीला शाह बापू जी की दादा गुरु जी की कोई भविष्यवाणी याद है?
एक बार बापू शरीर छोड़े ना उससे पहले इधर आए थे दिशा में, लीला शाह बापू इधर बैठ के बापू ने सत्संग किया, 2 दिन रहे थे इधर, सत्संग किया नहीं तो ये पाठ यही पाठ था, इस पाठ को बापू ने सत्संग किया बैठ के, तो इस तरफ स्वामी जी बैठे थे, इस तरफ उनका दूसरा शिष्य था बीरबान वो बैठा था, हम सब ऐसे सामने बैठे थे। चालू सत्संग में लीला शाह बापू ने बोला मैं कहीं भी शरीर छोड़ूं तो मेरा शरीर तुम जल में जल समाधि देना, हमारे को जमीन में नहीं डांटने का, जल समाधि देने का, जल समाधि देने का कहा सबका, हम सब बैठे थे सुना हमने बापू से लीला शाह बापू से, और तो किसी ने पूछा कि बापू ऐसे इसका क्या मतलब, बोले मेरा शरीर बहुत पवित्र है, ये शरीर है ना समुद्र में जल में जीव जंतु होते हैं वो खाएगा ना तो उनका भी कल्याण होगा, इसलिए मेरे को जल समाधि देना। उसके बाद बापू यहाँ से पालनपुर गए। पालनपुर जाने के बाद ये लासा बापू की बहुत तबीयत खराब हो गई। फिर यहाँ बापू को समाचार भेजा, फिर बापू गए रात को पालनपुर। पालनपुर गए तो सुबह 8 बजे बापू ने शरीर छोड़ा पालनपुर में। फिर हमारे को इधर बापू ने समाचार भेजा कि बापू ने शरीर छोड़ दिया, तुम सब लोग आओ दर्शन के लिए। तो हम सब पालनपुर गए, पालनपुर दर्शन किया बापू का। उसके बाद स्वामी जी ने फूल ले गई थी तो बापू से कोडाए हुए तो बापू स्वामी जी इधर स्वामी जी बैठे थे और इधर बीरवा बैठा था बापू के पास, लीला सा बापू के पास फूल ले गए। तो दूसरा भाई आया कि मेरे को दो में चढ़ा, मेरे को क्यों तेरे को दूँ ऐसे करके। तो लीला सा स्वामी जी ने मना किया कि अपने हाथ से चढ़ाएगा बापू को फूल। फिर हमने अपने हाथ से बापू को फूल चढ़ाए लीला सा बापू को, बोले आप तुम दूसरा वाले वापस जाओ, मैं बापू को खटारा में बिठा करके लेकर आऊँगा, सारे डिशा में फेरूँगा, बापू का दर्शन कराऊँगा सबको। फिर हम घर आए और बापू जी खटारे में बैठा करके बापू को ले आया, आँख के डिशा में फेरी। फिर धानेरे गए, धानेरे में आँखा में फेरी। फिर आदिपुर गए, आदिपुर गए ने तो वहाँ इसका शिष्य वीरबाण था ना, वो बोले बापू को जमीन में समाधि कराएंगे। स्वामी जी बोले कि बापू ने जल समाधि कहा है और ये समुद्र है, वहाँ समुद्र है, समुद्र में बापू को पधरा दें। बोले कि नहीं, समुद्र में नहीं पधराएंगे, जमीन में ही समाधि कराएंगे। तो उसमें बापू की बात मानी नहीं उसने बीरबान ने और जल समाधि नहीं कराई और जमीन में बापू को डटा। उसकी अभी समाधि है वहाँ, है ना नैनीताल में, आदिपुर में समाधि है बापू की। बीरबान ने माना नहीं तो फिर बीरबान की बड़ी खराब हालत हो गई आखिरी समय।
आपने प्रत्यक्ष कोई बापू जी का चमत्कार देखा है?
बापू नदी नहाने गए थे, नदी सुबह सुबह जाते थे तो नहाकर बापू वापस आ रहे थे, नदी से वापस आ रहे तो रास्ते में लोग इकट्ठा हुआ था और गाय मरी पड़ी थी। बापू ने लोगों ने पूछा कि क्या बात है, क्यों इकट्ठा हुआ? लोगों ने कहा बापू गाय मर गई है, गाय मरी है। बोले मरी नहीं, जिंदी है। ऐसे करके बापू ने करमंडल में ऐसे थोड़ा पानी छाटा तो गाय उठकर चली गई, जिंदी हो गई।
पूज्य गुरुदेव हमें अपने सत्संग में बताते हैं कि किस तरह वे एकांत के लिए अलग अलग जगहों पर जाते थे, अलग अलग गुफाओं में जाते थे। मुझे गुरुदेव ने हमें बताया कि किस तरह से वो एकांतवास के लिए माउंट आबू की गुफाओं में जाते थे।
ऐसे तो बोलते थे बापू को कि बापू कहीं जाए नहीं, यहाँ ही रहे। ऐसे हम बापू जाता ना तो मैं रोती खूब, बापू जाए क्यों, यहाँ से बापू जाते क्यों है? तो कुलबणी डॉक्टरी औरत है ना, औरत थी, वो भी सत्संग में आती थी। बोले आप बापू जाओ ना तो मिश्री तो रो रो के ढगला करती है कि बहुत रोती है, आप बापू जाए क्यों यहाँ से? क्योंकि बापू बोले अरे देख मेरा गुरु कितना दूर है, मैं रोता हूँ तो तुम रोती है कि मेरा गुरु ठेठ नैनीताल रहते हैं और मैं इधर रहता हूँ तो मैं नहीं रोता नहीं, तब रोने का नहीं। साधु तो रमते भले, साधु जितना फिरेगा उतना लोगों का कल्याण होगा, अब तुम्हें रोना नहीं, तुमसे रोना बंद हो गया।
और मिश्री दीदी हमारा आपसे आखिरी प्रश्न, कभी आपने पूज्य गुरुदेव से साधना के विषय में कोई प्रश्न किया है?
एक दिन बैठे ऐसे सत्संग पूरा हुआ तो बापू इधर खड़े थे, मैं इधर खड़ी थी। बोले बापू कहे ऐसे ध्यान जाके करो। बोले देखे तो मैंने पूछा बापू पता नहीं क्या पूरा याद नहीं है, वो ध्यान कैसे करूं? कुछ बोले नहीं, ऐसे बंद करके चले। ये वशिष्ठ माता है, राम जी ने पूछा अपने गुरु वशिष्ठ जी को, तो वशिष्ठ जी के जो पहले तो तुम्हारे को सत्संग सुनाता था मैं और उसका आप सर्वमन करते थे, लेकिन अब तो तुम प्रबुद्ध हो गए, बौद्ध स्वरूप हो गए हो, अब तुम्हारे को कोई बाहर की बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। तो बोले इससे कैसे? तब योग वशिष्ठ में ऐसे वशिष्ठ जी महाराज भी चुप हो गए कि महाराज आप चुप कैसे हुए, कि तुम्हारा प्रश्न का उत्तर ही चुप था इसलिए मैंने चुप हुआ। वही बापू ने मेरे को बताया तेरे प्रश्न का उत्तर चुप था, बापू चुप हो गए, बस आंखें बंद कर दी, कैसे चुप हो जाओ बस।
तो हम धन्यवाद करते हैं मिश्री दीदी का बहुत बहुत कि उन्होंने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया और अपने सुंदर क्षण, अपने सुंदर अनुभव हम सभी दर्शकों से साझा किए। उन्होंने अपने यादगार पल जो उन्होंने बापू जी के सानिध्य में बिताए, ऐसे अद्भुत पल, ऐसे अद्भुत दिन जो उन्होंने बापू जी के साथ बिताए वो उन्होंने हम सबके साथ शेयर किए, हम सब में बांटे। कहीं ना कहीं ये अनुभव जो हम सुनते हैं या जो अनुभव प्रत्यक्ष हमारे साथ होते हैं, ये अनुभव हमारी, हमारे गुरुदेव के साथ जो प्रेम की, विश्वास की डोर है उसे पक्के में पक्का कर देते हैं। और यही अटूट विश्वास, अपने गुरु में अटूट श्रद्धा ही शिष्य की सफलता का एकमात्र कारण बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलेंगे हम अगले हफ्ते एक बार फिर से एक नए अनुभव के साथ, ऐसे सुंदर दिव्य अद्भुत अनुभव के साथ। अगर आप में से कोई, आप दर्शक में से कोई अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहता है तो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे नंबर पर आप हमें संपर्क करके अपना अनुभव हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिसका नाम है मंगलमय डिजिटल यूट्यूब पर। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। मेरी और पूरी मंगलमय टीम की तरफ से आप सभी को नमस्कार।